ओम शांति। मेरे प्रिय युवा साथियों, आज का विषय बहुत छोटा है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। भीतर अचल, बाहर सफल। संसार हमें हमेशा सिखाता है, बाहर सफल बनो, अधिक पैसा कमाओ, अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करो, फॉलोअर्स बनाओ, अधिक उपलब्धियां हासिल करो। लेकिन जो व्यक्ति यह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्या वो भीतर से सफल हो पाता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जिसे हम सफलता कहते हैं, क्या वास्तव में वो सफलता हमें सुख देती है? यदि उस सफलता के साथ भीतर तूफान है, उस सफलता के साथ भीतर बेचैनी है, तो वो सफलता एक नया दुख बन जाती है। आज अगर हम दुनिया में देखें तो चारों तरफ बेचैनी ही बेचैनी है। मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई है, मनोरंजन है, सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य मन शांत क्यों नहीं है? शायद हमने बाहर की गति बढ़ाई, पर बाहर की गहराई को हमने खो दिया है। एक पेशेंट था जो हमारे पास आया, और उसने कहा था, वो युवा था, एक कुछ स्पोर्ट्स के लिए माउंट आबू में आया था, तो उसने कहा था कि मुझे बहुत सक्सेसफुल होना है। हमने उससे ऐसे ही पूछा था कि तुम्हारी सफलता की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो उसने कहा था, अच्छी नौकरी मिल जाए, कार मिल जाए, घर मिल जाए, लोगों का सम्मान मिल जाए। तो हमने उससे जस्ट ऐसे ही पूछा था कि ये सब अगर तुमको मिल भी गया, परंतु यदि रात की तुम्हारी नींद खो गई, तो फिर क्या तुम इसे सफलता कहोगे? तो वो जो पेशेंट था, युवा, वो एकदम चुप हो गया। वास्तव में सफलता का प्रश्न बाहर का है ही नहीं। प्रश्न एक ही है कि क्या मैं स्वयं का स्वामी हूं? क्या मेरे संकल्प मेरे वश में है? मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक गुरुकुल था, और उस गुरुकुल में कई सारे छात्र पढ़ते थे, और उनका यह अंतिम दिन था। तो गुरु को कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा दी जा रही थी, और जो दूसरे वहाँ पर पढ़ने वाले थे, वो सभी राजकुमार थे, बड़े बड़े घरानों से आए हुए लोग थे वो सारे बच्चे। उसमें से एक अत्यंत गरीब विद्यार्थी था, तो दूसरे उसके जो साथी थे, उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या देने वाले हो गुरु को? तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं को दे रहा हूँ। तो सब लोगों ने हंसी उड़ाई उसकी। स्वयं को? स्वयं को देना अर्थात क्या? उसने कुछ नहीं कहा, और एक एक करके गुरु के कक्ष में सभी विद्यार्थी जाने लगे, बहुमूल्य उनको सौगात देने लगे। और जब इसका समय आया, इस गरीब विद्यार्थी का, तो वो अंदर गया और गुरुजी ने उससे पूछा, और फिर तुम क्या लाए हो? तो उस विद्यार्थी ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया हूँ, मैं स्वयं को लाया हूँ। तो गुरुजी ने कहा, स्वयं को लाया हूँ, इसका क्या अर्थ है? और उस विद्यार्थी ने कहा कि मेरी उम्र आपको लग जाए, और इतना कहकर उसने शरीर का त्याग कर दिया। हम न मालूम कितनी बार ऐसा कहते होंगे दूसरों को कि मेरी उम्र आपको लग जाए, पर ऐसा कभी होता नहीं। उस विद्यार्थी में ऐसा क्या था कि उसने कहा और वो हो गया? तो कहीं ना कहीं उसने अपना स्वयं का स्वामी, स्वयं के संकल्पों का स्वामी बनने का जरूर पुरुषार्थ किया होगा, तभी उसने कहा और वो हो गया। नहीं तो ऐसा होना बहुत कठिन है। यह तभी हो सकता है जब किसी के पास लंबे समय की साधना है, जहां हमारे संकल्प सफल होने लगते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बाइबल में भी मिलता है। वहां पर दिखाया है, गैलीली की झील है, और जीसस क्राइस्ट अपने साथियों के साथ नाव से जा रहा है, और अचानक वहां पर तूफान आ जाता है, और जीसस क्राइस्ट तो सोया है एक कोने में उस नाव के। तो उसके जो शिष्य होते हैं, 12 शिष्य, वो एकदम से घबरा जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आता है अब करना क्या है। और वो जब देखते हैं कि उनका मास्टर, उनका स्वामी वहाँ सोया है, तो वो घबरा कर जाते हैं और उससे कहते हैं कि मास्टर प्लीज़ वेक अप। उसको कहते हैं कि आप उठो, जागो, देखो ये क्या हो रहा है। और जीसस क्राइस्ट आंखें खोलता है और देखता है चारों तरफ तूफान है, वो झील का पानी नाव में आ रहा है, नाव अब डूबी की डूबी। और उसी समय वो खड़ा हो जाता है और एक कायक कहता है पीस बी स्टिल, अर्थात शांत, अर्थात वो जो तूफान है उसको वो आदेश देता है कि हे तूफान तू रुक जा। और दिखाया गया है कि तूफान रुक जाता है। तो ये जो शब्द थे इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि जिसने तूफानों को भी रोक दिया? तो ज़रूर उन शब्दों के पीछे जो चेतना है, उन सब शब्दों के पीछे जो संकल्प है वो बहुत शक्तिशाली होगा। तो ये दोनों उदाहरणों से हमें ये पता चलता है कि जितना भीतर हम संकल्पवान होंगे उतनी ही हमें बाहर सफलता प्राप्त होगी। यदि एक छोटी सी आलोचना हो जाती है और वो मुझे हिला देती है तो क्या मैं सफल हूँ? यदि कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है और मेरा मूड बदल जाता है तो क्या मैं सफल हूँ? यदि कोई मुझसे गलत व्यवहार करता है और मेरे मन में एक तूफान खड़ा हो जाता है तो क्या मैं स्वयं को सफल मानूंगा? नहीं ना। तो यही तो कि हमें स्वयं को देखना है, स्वयं को चेक करना है कि मैं कितना भीतर से स्थिर, कितना भीतर से अचल रह सकता हूँ। और इसकी हरेक को, हर युवा मन को एक साधना करनी पड़ेगी। और युवा जीवन ही वो समय है जब ये साधना की जा सकती है, संकल्प की साधना। हवा इधर चली, पत्था उधर चला, हवा इधर चलती है, पत्था फिर उधर चला जाता है। पत्ते का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु यदि आपने हिमालय को कभी देखा होगा तो आंधियाँ आती है, तूफान आते हैं, बरसात आती है, फिर भी वो पर्वत अड़िक खड़ा रहता है। तो हमें उस अड़िक शिला जैसा, उस पर्वत जैसा बनना है। परंतु अधिकांश लोग हम देखते हैं जीवन में पत्ते की तरह होते हैं। हम देखते हैं कई बार हॉस्पिटल में, आईसीयू में, जब कोई सीरियस पेशेंट एडमिट होता है तो पेशेंट तो एडमिट होता है पर उसके तो रिश्तेदार होते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं और उनको बाजू के बेड में लेना पड़ता है। पेशेंट तो बहुत सीरियस है ही पर उसके जो रिश्तेदार हैं खड़े खड़े घबरा जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं और उनको कुछ हो जाता है। उसी तरह यदि कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, कोई मेरी आलोचना करता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ। किसी ने लाइक किया तो बहुत खुश होती है, खुशी होती है, और किसी ने अनदेखा कर दिया तो बेचैनी होती है। क्या यह जीवन है? क्या यह मानसिक गुलामी नहीं है? तो हम सब राजयोगी है और राजयोग हमें सिखाता है कि हमें बाहर भागना नहीं, हमें अपने भीतर लौटना है। जब अपने शरीर को समझते हैं, जब हम अपने मन को समझते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं, तो धीरे 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 भीतर एक केंद्र बनने लगता है। और जो व्यक्ति अपने भीतर के केंद्र पर स्थापित होता है उसे संसार कभी भी डिगा नहीं सकते। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं मोबाइल का। अगर हम देखें तो सुबह उठते ही आज का युवक क्या करता है? सबसे पहले क्या वो अपना चेहरा देखता है, अपनी आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, या मोबाइल को देखता है? और हम फिर पूरे दिन अगर देखें तो मन में किस तरह के विचार संचालित होते हैं? जो जो हमने सुबह देखा वही सारे दिन भर चलते रहता है। कभी कोई वीडियो, कभी कोई रील, कभी कोई खबर, तो कभी कोई विवाद, और उसके वजह से परिणाम क्या होता है? मन हमेशा चलायमान होता है। और जो भीतर चलायमान है वो बाहर सफल कैसे हो सकता है? और सफलता के लिए तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा तो आती है एकाग्रता से, और एकाग्रता के लिए चाहिए स्थिरता, और उसी स्थिरता के लिए चाहिए आत्मचेतना, आत्मचेतन। जैसे एक और उदाहरण दिखाया है, आप सब जानते हैं महाभारत में बहुत सुंदर उदाहरण है। गुरु द्रोण जब पूछते हैं कि तुम सबको क्या दिखाई दे रहा है, हर एक ने अलग अलग उत्तर दिया। किसी ने कहा मुझे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, किसी ने कहा मुझे डाली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा मुझे पक्षी दिखाई दे रहा है, परंतु अर्जुन एकमात्र ऐसा था कि जिसने कहा, मुझे केवल और केवल उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, और यही सफलता का रहस्य है। और रहस्य है एकाग्रता, और वह एकाग्रता आएगी भीतर की अचल अडोल स्थिति से। बाहर की जो सफलता है वो भीतर की स्थिरता से जन्म लेती है। यदि हमारा मन बिखरा हुआ है तो बिखरा हुआ मन कभी भी बड़ी उपलब्धि नहीं कर सकता। एक दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं समुद्र का। नदियाँ जो होती है समुद्र में गिरती रहती है, फिर भी समुद्र भरकर बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें गहराई होती है, वो बड़ा विशाल होता है, अथांग होता है। जिस व्यक्ति की चेतना गहरी हो जाती है उसके जीवन में भी अनेक परिस्थितियाँ आती है, लेकिन वह बाहर बहता नहीं, वह साक्षी बना रहता है। तो अचलता की जो साधना है वो वास्तव में साधना साक्षी की साधना है। जितना जितना हम अंदर साक्षी होते जाएंगे, हमारी स्थिति उतनी ही अचल अडोल होती जाएगी। आज हम देखें तो सबसे बड़ा रोग जो है वो तनाव नहीं है, दुख नहीं है, अवसाद नहीं है, चिंता नहीं है। हम सबके पीछे बस एक ही सबसे बड़ा रोग है, और वो है अस्थिर मन। मन तो जैसे एक बंदर की तरह है, और इस डिजिटल युग ने उस बंदर को और भी शराब पिला दी है, और वह और ही उछल रहा है। इसलिए आज की जो आवश्यकता है वो मन को दबाने की नहीं, मन को देखने की है। और यही तो योग है, यही तो ध्यान है, स्वयं को देखना। सफलता की अगर हम परिभाषा देखें तो सफल वो नहीं है जो व्यक्ति हजारों को प्रभावित कर सके, जिसके बहुत सारे लाइक्स है, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है। सफल वह नहीं कि जिसे दुनिया पहचानती है। सफल तो वो व्यक्ति है जो स्वयं को पहचानता है। सफल वो नहीं है जो स्वयं को दुनिया को बदले, पर जो स्वयं को बदलता है वह सफल है। भीतर अचल कैसे बने, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे हमने देखा, जितना जितना हम भीतर अचल बनते जाते हैं, वैसी वैसी उसी अनुपात में हमें बाहर सफलता मिलती जाती है। तो अचल बनने के हम आज इस सत्र में 5 ऐसे सूत्र देखेंगे, और ये सारे सूत्र आपके जीवन में है भी, परंतु जैसे बाबा कहते हैं, आप हो भी और आपको करना भी है। तो जितना जितना हम इसका पुनः चिंतन करेंगे, बार बार मनन करेंगे, बार बार इस पर चर्चा करेंगे, बार बार इसके विषय में सुनते रहेंगे, तो धारणाएं हमारी अपने आप बहुत स्थिर होती जाएगी। वास्तव में हमें धारणाओं पर काम करना ही नहीं है, हमें काम अपनी मान्यताओं पर करना है, अपनी विचारधारा पर करना है, अपने चिंतन पर करना है। हमारा जैसे ही चिंतन स्थिर हो जाता है, हमारे विचार जब प्रगतिशील होते हैं, हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आती है, तो अपने आप वो विचारों की मैच्योरिटी हमें बाहर जो धारणा है उनको अपनाने में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सारी धारणाएं हमें सहज होने लगती है। तो आज का जो टॉपिक है, स्टिल विदिन, अर्थात अचल भीतर से, इस अचलता को प्राप्त करने के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। हम बहुत सारे प्रयत्न करते ही हैं, परंतु हम और क्या क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से और ऑप्शंस हमारे पास है, उसके विषय में यदि हम और सोचे तो बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। और ये जो आज का सत्र है वो केवल यहाँ तक ही सीमित ना रहे। वास्तव में हम तो ये कहेंगे कि जब ये छोटा सा सेशन पूरा होगा, उसके बाद से इस सत्र को आप और आगे लेके जाइए, इसके ऊपर चर्चा करिए, इन्हीं कि भीतर हम अचर कैसे रहे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, साइकोलॉजी में कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। जब 2-3 लोग मिल के बैठते हैं और कोई एक टॉपिक लेते हैं तो बहुत अच्छा चिंतन चलता है, बहुत अच्छी बातें निकल कर आती है। तो उसी तरह आज हम ऐसे 5 छोटे छोटे सूत्र देखेंगे जिससे हम और ही अधिक अचल बन सके। तो हमारा आज का सबसे पहला सूत्र जो है, आप सब जानते हैं, अमृत वेला। सुबह का ये जो समय होता है, मन को हम रिसेट कर सकते हैं। जब सारी दुनिया सो रही होती है, और ये वो समय है जब आत्मा और परमात्मा का संवाद होता है। तो अमृत वेले का जो समय है, उसके विषय में हम बहुत कुछ जानते हैं। हम लोगों ने अमृत वेले पर भट्टियाँ की है, अमृत वेले पर हो सकता है आप लोगों ने कई सारी क्लासेस सुनी है और की भी होगी। उसके बावजूद भी एक ऐसा टॉपिक है कि जितना जितना हम इसके विषय में अधिक जानेंगे उतनी हमारी भीतर की स्थिति अचल होगी। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, कोई एक कुमार है, कोई कुमारी है, और वो बहुत समय से ज्ञान में चल रहा है, और अचानक एक दिन उसका अमृतवेला मिस हो जाता है। अभी हो सकता है कि पिछले 5 सालों में एक बार भी अमृतवेला मिस नहीं हुआ, पर आज अचानक अमृतवेला मिस हुआ, तो क्या किया जाए? अब उसके अंदर जो हमने देखा, एक तो गिल्ट कॉन्शियस आ जाता है, गिल्ट कॉन्शियसनेस आ जाता है, वो सोचता है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और वो गिल्ट कॉन्शियसनेस पूरा दिन भर चलता है। वो दिन भर यही सोचते रहता है कि मेरा अमृतवेला मिस हो गया, मेरा अमृतवेला मिस हो गया, मेरा अमृतवेला मिस हो गया। अगर आप देखें अमृतवेले का इतिहास, तो यज्ञ की शुरुआत में अमृतवेला नाम का ऐसा कोई प्रकार था नहीं। सब लोग उठते थे बाबा के साथ, सभी यज्ञवत्स रहते थे, और वो लोग उठते थे और अपने सुबह का कार्य करते थे, और फिर बाबा ने धीरे धीरे ये एक नियम इंट्रोड्यूस किया। उसका एक कार्य ये था, उसका एक कारण ये भी था कि सारे कार्य समय पर हो जाए। अब इतने सारे बच्चे हैं, सबको नहाना है, सबको वॉशरूम यूज़ करना है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो ये कोई ऐसा नियम नहीं था कि 4 बजे सबको कंपलसरी उठना ही है और बैठना ही है। अब उठने और बैठने का लक्ष्य जो है वो इसलिए भी है कि सुबह का वातावरण बहुत शांत होता है और हमारा मन बहुत तेज़ी से एकाग्र हो जाता है, हम आत्माभिमानी बन सकते हैं बहुत आसानी से, इसलिए वो नियम इंट्रोड्यूस किया गया। परंतु फिर धीरे 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 जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, ये एक नियम के रूप में आ गया। और अमृत वेले पर तो हम लोगों ने पूरी एक 108 दिन की भट्टी भी की है, शायद आप लोगों ने में से कुछ लोगों ने वो की भी होगी, और बहुत सारी क्लासेस हैं अमृत वेले पर, दादियों ने बहुत सी बातें कही है। और अमृत वेले का समय तो जैसे हम कहते हैं, जैसे जैसे पावरफुल होते जाता है हमारा अमृत वेला, अपने आप दिन पावरफुल होते जाता है। पर हम बात कर रहे थे तब क्या करें जब अचानक हम अमृत वेला हमने मिस कर दिया। तो अमृत वेले को प्रभावित करने वाली बहुत सी बातें हो सकती है। हो सकता है कि आप सारे दिन भर बहुत थके हुए हैं, हो सकता है कि दिन में बहुत सारे तूफान आए हैं, हम शरीर से तो नहीं थके परंतु मन तो थक गया है। वो जो नियम है कि जब हमने सब कुछ अच्छे से किया फिर भी अमृत वेला मिस होता है, तो फिर उस समय ये नहीं सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। आप अगर जिस समय भी उठो, उठ जाओ, उसी समय बैठ जाओ, भले 5 बजे उठे, आराम से बैठो और बाबा को याद करो, ताकि वो जो 23 घंटे जो वेस्ट होने वाले थे वो नहीं होंगे। नहीं तो इधर मिस कर दिया और फिर सारे दिन भर पश्चाताप में चला गया और मूड ऑफ रहा तो पूरा 24 घंटा चला गया। कारण को ढूंढना है, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहा कि जिसके वजह से ये अमृत वेला मिस हुआ, हम ऐसा क्या करें कि अगले दिन हम उस गलती को ठीक कर दे। तो जो अमृत वेला स्वयं से जुड़ता है, दिन भर परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती, यह हम सब जानते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है जो हमें अचल बनाती है वो है अमृत वेला। हर एक को इस पर इंडिविजुअल काम करना है। आपका एक तो समय को बढ़ाना है थोड़ा सा, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, उसके विषय में चिंतन करना है, मनन करना है, सोचना है उसके विषय में कि और क्या किया जा सकता है। अमृत वेला उठकर केवल योग करने के लिए नहीं है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें करनी है। अगर हमारे पास ज़्यादा समय है, हम थोड़ा सा मुरली की चीज़ें पढ़ सकते हैं, कुछ ऑडियो सुन सकते हैं, अव्यक्त बाप दादा को सुन सकते हैं। यदि फिर भी बहुत नींद आती है, चलते फिरते घूमो, प्रकृति के छत पर चले जाओ, बालकनी में चले जाओ, वहाँ बैठ के करो। आप सब लोग घरों में रहते हैं, या हम देखते हैं मधुबन में भी सुबह सुबह कभी भी जाओ, माता है तो बैठी ही रहती है, 2 बजे जाओ, 2:15 बजे जाओ, 2:45 बजे जाओ, शांति स्तंभ पर कोई ना कोई रहता ही रहता है, बारिश हो फिर भी रहती है, छाता लेकर अमृत वेला कर रहे, ये सारे दृश्य हमने इतने सालों में यहाँ देखे। तो उससे ये भी हमें पता चलता है कि जितना हमारा अमृत वेला स्थिर होता है, सारे दिन भर भीतर हमारी स्थिति अचल रहती है। और जब भीतर अचलता है तो बाहर अपने आप सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप सब फिर से अपने अमृत वेले को देखें, उसकी क्वालिटी क्या है, हम कौन कौन से प्रयोग करते हैं। योग में नवीनता लानी है, नए नए प्रयोग, हर दिन जो कल अमृत वेला प्रयोग किया आज वो ना हो, कुछ तो नया। और उसके लिए आपको थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, कॉमेंट्रीज को सुनना पड़ेगा, परंतु योग के समय नहीं सुननी है वो कॉमेंट्री, आपको किसी और समय सुनना है, ताकि योग के समय हम उसका प्रयोग कर सके। हम ये भी देखते हैं कई लोग कॉमेंट्री लगा के रखते हैं और बाहर के बाजू के लोग फिर डिस्टर्ब भी होते हैं उसकी वजह से। तो ऐसा ऐसी एक नवीनता लानी है कि जिससे उसमें हमें बोरियत अनुभव ना हो। तो सबसे पहला जो सूत्र है जो हमें अचल करता है वो है ब्रह्मचर्य, अमृत वेला। दूसरा जो सूत्र है वो है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य आप जानते हैं केवल शरीर का संयम नहीं है, तो ऊर्जा का संरक्षण है। जिसकी जीवन शक्ति विषयों में नहीं बहती बहती वो धीरे धीरे संकल्पों का सम्राट बन जाता है। तो हम सब के अंदर एक दिव्य ऊर्जा है, और उस ऊर्जा को यदि हम बहा देते हैं, ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, तो अपने आप हमारी एकाग्रता कम हो जाती है। इसलिए ब्रह्मचर्य तो एक ऐसा टॉपिक है, प्यूरिटी एक ऐसा टॉपिक है कि जितना उसके विषय में हम जाने, जितना उसके विषय में हम पढ़े, उतना और ही अच्छा। हमारे यज्ञ में भी बहुत सी किताबें लिखी हुई है, उसको पढ़ते रहना है। आपका यदि कोई ग्रुप है उसमें इसके बारे में चिंतन करते रहना, डिस्कस करते रहना, और उसके नए आयाम क्या है वो ढूंढते रहना। अगर हम देखें आयुर्वेद में या शास्त्रों में, हमारा जो स्थूल शरीर है ये केवल एक ही शरीर नहीं है, उसमें तो 5 प्रकार के शरीर दिखाए हैं। और ये जो स्थूल शरीर है इसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर भी है, इथेरियल बॉडी। और उस सूक्ष्म शरीर में ऐसा दिखाया है कि चक्र है, केंद्र है। तो जो सबसे निचला केंद्र है, मूलाधार का केंद्र, वो काम का केंद्र है। अगर वो केंद्र हमारा सक्रिय रहता है तो हमारे मन में निरंतर कामुक कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है। सारी साधना उस केंद्र को निष्क्रिय करने की साधना है। और जैसे जैसे वो केंद्र निष्क्रिय हो जाता है, फिर हमारे अंदर कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जो स्थूल शरीर है उसमें, उस तल पर हम नहीं जीते, हम सूक्ष्म शरीर तल पर जीने लगते हैं। जो हम देखते हैं कि एक स्त्री का शरीर है, एक पुरुष का शरीर है। अब ये जो शरीरों का आकर्षण है वो वास्तव में स्थूल आकर्षण है ही नहीं, ये आकर्षण चेतना का, उस सूक्ष्म शरीर का आकर्षण है। क्योंकि सबसे शक्तिशाली केंद्र जो है वो स्थूल, वो मूलाधार का केंद्र है। यदि हम उस पर कार्य करते हैं और उस केंद्र को हम निष्क्रिय कर देते हैं, तो वही ऊर्जा ऊपर उठेगी, और फिर ये जो स्त्री होने का और पुरुष होने का जो भाव है, हम उसी से ऊपर निकल जाएंगे, उसी को हम पार करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये जितनी भी दुविधा है, डिफिकल्टीज है कि हमारा ब्रह्मचर्य टूट गया, हमारे स्वप्न ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, ये होता है वो होता है, इससे हम अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ा विषय है, और केवल ऊपर से प्रतिज्ञा लेने से भी नहीं होगा, इसको आपको समझ से, अंडरस्टैंडिंग से इससे पार निकल जाना है। और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है महात्मा बुद्ध का, ध्यान लगा कर बैठे हैं, कुछ लोग हैं किसी स्त्री का पीछा कर रहे हैं, वो स्त्री भाग जाती है। वो लोग आते हैं बुद्ध के पास और पूछते, क्या आपने किसी स्त्री को यहाँ से भागते हुए देखा? बुद्ध कहते हैं कि मैंने किसी को देखा, पर वो स्त्री थी या पुरुष थी, पुरुष था ये मुझे पता नहीं, कोई तो गया, क्या उसने पहना था मुझे कुछ पता नहीं। तो ये चेतना इतनी ऊपर उठ गई है, ऊर्जा इतनी, ऊर्जा का ऐसा उदात्तीकरण हो गया है कि वहां पर स्त्री और पुरुष इस भान से चेतना अपने आप ऊपर उठ जाती है। तो हम उस समय ऊर्जा के तल पर जीते हैं, और ऊर्जा स्त्री न पुरुष, ऊर्जा न स्त्री है न पुरुष है, ऊर्जा तो जेंडरलेस है, निर्लिंग है। और जब हम ऊर्जा के प्राणिक तल पर जीना जीना चालू करते हैं, एक स्पिरिट के तल पर, तो अपने आप हमारा व्यक्तित्व बदल जाता है, हम एक दूसरा व्यक्ति बन जाते हैं। तो दूसरा जो है सूत्र वो है ब्रह्मचर्य, और तीसरा सूत्र जो है वो है कंट्रोल ऑफ एपिटाइट। हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो भूख है, जब हम उसको नियंत्रित करते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एक दिव्य शक्ति जन्म लेती है, जो पेट को जीत लेता है, वो तो आधे मन को ही जीत लेता है। अधिक भोजन, अधिक स्वाद और अधिक भोग मन को और ही भारी बनाते हैं। इसलिए संतुलित आहार जो होता है भीतर स्थिरता लाता है। जितना आवश्यक उतना भोजन, उतना ही निर्मल मन रहेगा, ऐसी कहावत है। तो जो हम खाते हैं वैसी वैसा ही हमारा मन बन जाता है। तो धीरे धीरे हर एक को अपने भोजन पर कार्य करना है, देखना है हम जो खा रहे हैं उससे हमारे अंदर हल्कापन आ रहा है, शक्ति जन्म ले रही है, या हमें और ही उत्तेजित कर रही है, और ही हमारे अंदर आलस, प्रमाद और निद्रा ला रहा है वो भोजन, हमें और ही अधिक भोगी और रोगी बना रहा है। तो हर एक को यदि संकल्पवान होना है और अपने अंदर भीतर स्थिरता लानी है तो सबसे पहले हमें अपने भोजन को स्थिर करना होगा। जितना जितना भोजन स्थिर होते जाएगा, स्वाद स्थिर होते जाएगा, उतनी उतनी हमारे अंदर एक अद्भुत सी ऊर्जा उत्पन्न होते होनी चालू हो जाएगी। और जो जिह्वा को जीत लेता है वो बाकी सारी बची हुई इंद्रियों को सहज जीत लेता है। इसलिए देखना है हम क्या खा रहे, कितना खा रहे, कैसे खा रहे, जो खा रहे हैं वो किन पैसों से आ रहा है, किस भावना में हम वो पैसे कमा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं उसको वैसे ही खा रहे हैं कि प्रेम से खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं, कंप्लेंट के साथ खा रहे, भोग लगा के खा रहे, या फिर भूख लगी और बस खा रहे। खाते समय हमारे मन की स्थिति क्या है, कितना हम मौन में है, कितना एकांत में है। जब यज्ञ में शुरुआत में जब भोग लगना चालू हुआ तो हमने दादियों से सुना है वो लोग इतना एकांत में बैठते थे, बाबा खुद बैठते थे, मम्मा खुद बैठती थी, और एक सन्नाटा सा छा जाता था जब भोग लगता था उस समय। तो बहुत शांत चित्त होकर भोग लगाकर हम भोजन खाए तो हमारा मन अपने आप निर्मल होते जाएगा और हमारी आंतरिक स्थिति और ही अचल होगी और सफलता अपने आप प्राप्त होगी। तो ये एक सेल्फ टॉपिक है जिस पर आपको खुद कार्य करना है। और चौथा जो है वो है डिजिटल डिटॉक्स। अगर हम देखें तो आधुनिक युग में इस डिजिटल युग में हमारी एकाग्रता को यदि कुछ भंग करता है, और सबसे ज़्यादा ध्यान भंग जो करता है वो है मोबाइल। ये सबसे बड़ा एक साधन है, हर नोटिफिकेशन जो मन को वर्तमान से उठाकर बाहर फेंक देता है। कुछ समय स्क्रीन से नहीं, हम स्वयं से भी जुड़े। मोबाइल को चार्ज तो हम करते हैं, पर क्या हम वैसे ही अपनी आत्मा को भी चार्ज करते हैं? और जितना जितना हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ते जाता है, हमारा जो ग्रीन टाइम है, हमारा जो सोल टाइम है, हमारा जो गॉड टाइम है, वो धीरे 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 कम होते जाता है। इसीलिए भले हम चारों तरफ डिजिटल साधनों से सराउंडेड है, पर ये देखना है कि कौन कौन से, सबसे पहले तो अनावश्यक ऐप्स है जो आपने मोबाइल पे डाल के रखे, उनको अनइंस्टॉल कर देना है। कितने कितने चैनल्स हैं जिनको आपने सब्सक्राइब करके रखा है, उन सबको अनसब्सक्राइब कर दो। कितने सारे नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं जो हमारे ध्यान को भंग करते हैं, और कितने सारे यूट्यूब चैनल्स है, ये सब एक ब्लैक होल की तरह है जो हमारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। और दूसरी एक चीज़ है वर्तमान में न्यूज़, इतने सारे न्यूज़ चैनल, इतने सारे न्यूज़ एंकर्स, हर एक का अपना एक अलग बयान, और उसमें एक जैसे एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी सुनूं, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, और फिर हमारा मन डिस्टर्ब रहता है, और फिर ऐसा डिस्टर्ब मन परिस्थितियों के सामने और ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखना है मोबाइल हम कहाँ तक यूज़ करते हैं, हम डिजिटल मीडिया का प्रयोग कितना कर रहे हैं, यूट्यूब का प्रयोग कितना कर रहे हैं। हर संडे वो स्क्रीन टाइम आता है, उससे आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन टाइम कितना रहा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा या 15 घंटा, वो सब आपको देखना है। और फिर डिसाइड करना है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं ये मोबाइल जिसको हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा साधन है सेवा का, सबसे बेस्ट साधन है, पर कहीं ये साधन हमारी अपनी डिससर्विस तो नहीं हो रही है, हम खुद तो विकार में नहीं जा रहे इसकी वजह से। दूसरों को भले हम उसके वजह से सेवा का साधन बनाकर उसका उपयोग कर रहे, पर उसकी वजह से खुद हम किसी गर्त में तो नहीं फंस गए। तो हर एक को ये देखना है कि मोबाइल का हम कैसा प्रयोग करते हैं और बाकी जो डिजिटल साधन है। और जो पांचवा सूत्र है वो है ई, एनवायरनमेंट, अर्थात प्रकृति का सानिध्य। जिस वातावरण में हम रहते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है। प्रकृति के बीच बैठना और श्रेष्ठ संगति में रहना मन को सहज स्थिर करता है। पेड़ हो गया, पर्वत हो गया, आकाश, ये सब हमारे मौन महागुरु है। कुसंग जो होता है वो मन को चंचल करता है, पर सत्संग मन को अचल बनाता है। और यदि हम कहें तो प्रकृति का सानिध्य जो है ये एक बहुत बड़ा सत्संग है। तो आप तो अपने घरों में रहते, शहरों में रहते, पर जितना हो सके संडे के दिन कहीं प्रकृति के सानिध्य में जाए। और रोज भी अगर कोई गार्डन हो, छत हो, थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह प्रकृति के सानिध्य में जाके बैठो, स्वयं से बातें करो, स्वयं से मुलाकात करो, स्वयं से वार्तालाप करो, अपने जीवन के बारे में सोचो कि मुझे आगे और क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन बहुत शांत शांत होते जाएगा, और प्रकृति जो है वो बड़ी मौन है, और मौन हमें और अधिक परामौन, जो परमात्मा महामौन है, उससे हमें प्रकृति जोड़ती है। तो ऐसे ये 5 सूत्र हैं जो हमने आज देखे। पहला सूत्र हमने देखा अमृत वेला। तो अमृत वेला आप उठते ही है तो सबसे पहला तो उसको कंसिस्टेंट बनाना है। प्रोफिशिएंसी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी अधिक इम्पॉर्टेंट है। जो बिल्कुल ही नहीं करते उन्हें संकल्प लेना है कि आज से करेंगे। अपनी एक इंडिविजुअल अमृत वेला की भट्टी करनी है 3 दिन की, कि जिसमें एक दिन भी मिस ना हो। अगर 3 दिन सफल हो गया तो फिर उसको 7 दिन तक ले जाओ, 7 दिन सफल हो गया तो 14 दिन, 14 दिन सफल हो गया तो फिर 21 दिन। तो अमृत वेला तो एक ऐसा टॉपिक है कि इसके विषय में आप बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ हम सबको जानना भी है। तो ये वही समय है जब हम सकाश दे सकते हैं, ये वही समय है जब प्रभु मिलन का अनुभव कर सकते हैं, ये वही समय है जब हम परमधाम का अनुभव कर सकते हैं, ये वही तो समय है जब हम रिटर्न जर्नी जो है हमारी आत्माओं की उसके विषय में सोच सकते हैं। दूसरा जो सूत्र बताया वो कहा, उसको हमने ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य से ऊर्जा। तो ब्रह्मचर्य जो है हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें हमारी जो शक्तियाँ जो यहाँ वहाँ बिखर जाती बिखरी हुई है उसको ब्रह्मचर्य एकाग्र करता है, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ स्थिरता है, स्थिरता अचलता हमें बाहर अपने आप सफलता प्राप्त कराती है। आपने देखा होगा जो लोग अध्यात्म में भी नहीं है, जो स्पोर्ट्स में है, जिनको कोई गेम खेलना है, अगर वो विकार में चले जाते हैं गेम से पहले तो उनका परफॉर्मेंस डाउन चला जाता है। इसलिए वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर उनका कोई मैराथन है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई उनकी कंपटीशन है जो 1 मास के बाद है, 1 मास पूरा संयमित जीवन जीते हैं। तो ब्रह्मचर्य, यहाँ तक कि लौकिक सफलता के लिए भी ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। अलौकिक में तो है ही है परंतु लौकिक में भी। फिर तीसरा हमने कहा आहार, तो संयमित आहार। तो हर एक को अपने ऊपर काम करना है, देखना है मैं नाश्ते में क्या लेता हूँ, दोपहर में क्या लेता हूँ, रात को क्या लेता हूँ, दिन भर क्या लेते रहता हूँ। अगर हम सारे ही दिन भर खाते ही रहेंगे तो हमारे शरीर को आराम नहीं मिलेगा। हमें लगता है हम जितना अधिक खाएंगे उतना अधिक शक्तिशाली होंगे, परंतु सत्य तो एकदम इसके विरोध में है। जितना संयमित हमारा आहार होगा, मित आहार होगा, उतना ही शरीर स्थिर होगा, शरीर स्वस्थ का अनुभव करेगा। नहीं तो हमारा शरीर ही यदि अनहेल्दी है तो हम इस जीवन में कभी भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकते। और चौथा जो हमने कहा वो है डिजिटल डिटॉक्स। इसके ऊपर बहुत सी क्लासेस है। डिजिटल वेलनेस एक बर्निंग टॉपिक है आज की दुनिया में। इसके विषय में आप जितना जान सकते हैं उतना जानना है। एक बहुत सुंदर मुझे लगता है स्पॉटिफाई में एक ऑडियो बुक है डिजिटल डिटॉक्स, हिंदी में है, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसमें मेरे ख्याल से 30 मिनट्स की है, वो 30-35 मिनट्स की एक ऑडियो है, पर बहुत अच्छी है। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें मॉडर्न युग में डिजिटल डिटॉक्स का क्या महत्व है वो उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट जो बताया प्रकृति, तो प्रकृति के सानिध्य में हम जितने रहेंगे उतना हम मौन रहेंगे, उतने ही हमारे अंदर ऊर्जा प्रकट होगी, उतने ही हम और शांत होते जाएंगे। और जो भीतर से शांत है वही वास्तव में सम्राट है, वही वास्तव में राजा है। और उसके लिए चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हाथ लगा दे, फिर कोई भी क्षेत्र में चला जाए, चाहे संगीत के, साहित्य के, काव्य के, कोई भी कला के, सफलता उसके कदम चूमेंगी। तो आज के इस सत्र में हमने 5 बातें देखी, अमृत वेला, ब्रह्मचर्य, भोजन पर संयम, डिजिटल माया से दूरी कैसे रखे, और प्रकृति और सत्संग की गोद में कैसे हम रहे। तो जितनी भीतर अचलता होगी उतना ही बाहर हमें सफलता हमारे जीवन में अपने आप प्रकट होगी। तो दुनिया आपको बाहर से सफल बनाने के 1000 तरीके बताएगी, लेकिन अगर आपको भीतर अचल बनना है तो ये तो बहुत कम लोग बन पाते हैं। इसलिए जीवन का ये सबसे बड़ा रहस्य है, जब भीतर अचलता आती है तो बाहर की सफलता उसका स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। जड़ें जितनी गहरी होगी वृक्ष उतना ही ऊंचा होगा, मौन जितना गहरा होगा प्रभाव उतना व्यापक। स्थिरता जितनी अधिक सफलता उतनी सहज। इसलिए आज से सभी संकल्प करेंगे कि मैं परिस्थितियों का दास नहीं, आत्मा का मैं स्वामी हूँ। मैं प्रतिक्रियाओं में नहीं साक्षी भाव में जीऊँगा। मैं भीतर अचल रहूँगा और तब बिना दौड़े बिना संघर्ष किए सफलता स्वयं मेरे द्वार पर आएगी। तो आज का ये विषय हम यहीं पूरा करते हैं। मधुबन की तरफ से, हम सब की तरफ से, सभी मधुबन निवासियों की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, सभी दादियों की तरफ से, सब की तरफ से आप सबको, सभी युवा वर्ग को, सभी युवा भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बाबा का जो ज्ञान है उसको समझने का और उसका विस्तार करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग में जो नवीनता ला रहे हैं, नित नए नए प्रयोग करते रहते हैं, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और कृति बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, आने के लिए कहा और आप सबसे मिलने के लिए हमें मौका दिया। तो आप उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ओम शांति।